ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे प्राण प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा ने हम बच्चों को हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों आए, फिर अब वापस कैसे जाना है, कब जाना है, सारी बातें हम बच्चों को आके बताई हैं। परम धाम से लेकर के हम आत्मा नीचे आई और फिर अब इस पुरानी दुनिया के विनाश के पश्चात हम अपने मीठे मीठे बाबा के साथ ही अपने घर जाएंगे। परंतु हम परम धाम से नीचे आए और अब वापस हम जब अपने घर जाएंगे, उस बीच के अंदर इस सृष्टि पर जो काल व्यतीत हुआ, अर्थात जो समय व्यतीत हुआ, और उस समय के अंदर जो युग बीते, जो अवस्थाएं बनी, जो स्थितियां निर्माण हुई, और हम आत्माओं की भी अपनी भिन्न भिन्न स्टेजेस की जीवन जो बनी, उसके अंदर परिवर्तन आता गया, और उस परिवर्तन के चक्र को, अर्थात इस सृष्टि रूपी जगत में या स्टेज पर हम आत्माओं ने आदि से लेकर अंत तक जो पाठ व्यतीत किया, इस समय के चक्र को बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ये है ड्रामा, अर्थात स्वदर्शन चक्र, जिसमें हम आदि मध्य अंत अपना पार्ट प्ले करते हैं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ मुझे शाब्दिक अर्थ बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूं, क्योंकि सभी स्वदर्शन चक्र के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं कि जिस चक्र के अंदर स्व का हमें आदि मध्य अंत दर्शन होता है, वो है स्वदर्शन चक्र। परंतु यही स्वदर्शन चक्र बाबा ने हमें कहा कि ये एक ड्रामा है, और इस ड्रामा के अंदर भी ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिन, हम सभी आत्माएं उसमें से गुजरती हैं। स्टेजेस भी बता दी बाबा ने, सतो रजो तमो, फिर एकदम कलयुग के अंत में हम तमो प्रधान, अब हमें सतो प्रधान फिर से बनना है। ये चक्र है, इसीलिए ये चक्र घूमता रहता है, और इस चक्र के लिए हम सभी जानते हैं कि ये चक्र देवी देवताओं के हाथों में दिखाया जाता है। परंतु बाबा ने हमें यह भी बता दिया कि ये देवी देवताओं के हाथों में क्यों दिखाया है। वास्तव में कोई देवी देवताओं के हाथों में ये चक्र नहीं है, परंतु हम ब्राह्मणों ने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ की यह रिजल्ट, या ये कहें कि उनको उपलब्धि जो हुई, उस उपलब्धि का सर्टिफिकेट उनको देवी देवता स्वरूप में उनके हाथ में चक्र दिखाते हैं। चक्र अर्थात हम सभी जानते हैं कि गोल, राउंड, गोलाकार। अब हमें अपनी स्थिति को वर्तमान बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को अचल बनानी है, अडोल बनानी है, स्थिर रखनी है, क्योंकि आगे चलकर अभी समय इतना नाजुक आने वाला है, जिस समय में यदि हमने अपनी अचल स्थिति का बहुत काल अभ्यास नहीं किया, यदि हमने अपनी अडोल स्थिति बहुत काल से नहीं बनाई और उसको भी स्थिर रखने का अभ्यास नहीं किया, तो अंत में जब हमारे सामने विनाश की घड़ियां या विनाश के भिन्न भिन्न नजारे जो आएंगे, जो अति दुखद घड़ियां होंगी, देखने को भी दुखद घड़ियां, सुनने को भी दुखद घड़ियां और सहने को भी जो दुखद घड़ियां होंगी, जिसको देख करके हम हलचल में आ सकते हैं, हमारी स्थिति डावाडोल हो सकती है, हम अपनी एक रास्ता गंवा सकते हैं। इसीलिए बाबा हमें बार बार अचल और अडोल स्थिति बनाने के लिए ड्रामा की स्मृति दिलाते रहते हैं। अब ड्रामा की स्मृति क्यों बाबा दिलाते हैं? स्वदर्शन चक्र की स्मृति बाबा क्यों दिलाते हैं? तो आप देखेंगे, मनुष्य का एक ऐसा निजी स्वभाव है कि जहां सरलता है, सहज है, वह कार्य वो सरलता से करता है, वहां वह खुश भी रहता है, स्थिति भी उसकी बनी हुई रहती है और उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। परंतु जैसे ही उस सरल स्थिति या सहज स्थिति के विपरीत जरा सा भी उसको कोई विरुद्ध बात या विपरीत बात या विपरीत साधन उसके सामने आ जाता है, तो वो हलचल में आना शुरू हो जाता है, वो अपनी वो स्वाभाविक स्थिति रख नहीं पाता है। जो उसकी ओरिजिनल स्टेज होती है, वो स्टेज पर वो रह नहीं पाता है। जैसे स्थिर जल होता है, तो उस स्थिर जल के अंदर, जब तक उस स्थिर जल के अंदर कोई भी ऐसी हलचल करने वाली चीज या साधन नहीं है, तब तक वो जल स्थिर है। लेकिन यदि एक छोटा सा पत्थर उठाकर हम उस जल के अंदर फेंके, तो जितना जोर से हम फेंकेंगे, उतने उसके परिघ में चक्र पर चक्र बनते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो वर्तुलाकार में, वृत्ताकार में ये जो वर्तुल बनते जाते हैं, वो क्यों बने? क्योंकि जल जो स्थिर था, उसको हलचल की स्थिति में कैसे लाया गया? कि बाहर से हमने उसके ऊपर वार किया और उसको हमने हिलाया। ठीक वैसे ही आत्मा की यह शरीर के अंदर जो भी कर्मेंद्रियां हैं, यदि उन कर्मेंद्रियों को थोड़ा सा भी जो उसकी कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली से कुछ अलग किया या उसको अलग दिया या कहीं बाहर से उसे दिया जो कि उसके स्वभाव में वो बात नहीं है, परंतु हमने दिया, तो वो तुरंत हलचल में कर्मेंद्रियां आने लगती है। जैसे हम वृत्ति की बात उठाएं, पहले वृत्ति के अंदर जब हम परम धाम से आए, तो हमारी वृत्ति बड़ी शुद्ध थी, बड़ी सतो प्रधान थी, बड़ी पावन थी, बड़ी पवित्र थी, बाबा हमारे पवित्रता के सागर परम पवित्र हमें पतित से पावन बनाने वाले, तो इसीलिए हमारे अंदर भी वही गुण था कि हम पवित्र थे, सत्व प्रधान थे। लेकिन हम जब इस सृष्टि पर आए तो पहले तो हम उस प्रभाव में बराबर रहे, और वह समय भी जब बीतता चला गया और फिर जब द्वापर युग आना शुरू होता है तो देह अभिमान की प्रवेशता जो हमारी असली स्थिति से हमें नीचे ले आता है। अब हमारी वृत्ति को देही अभिमानी की ही आदत है, परंतु माया की प्रवेशता के कारण, अर्थात हम जो स्मृति स्वरूप थे जिससे सामर्थ्य हमारा 21 जन्मों तक चला, वो धीरे 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 कम होने लगा और हमारी सुकृति समय के प्रभाव में और कुछ हमारे से कम कैटेगरी वाली आत्माओं के संग से हमारे अंदर वह बात आने लगी जो हमारी असली स्थिति के स्टैंडर्ड को बनाए नहीं रखती, और इसीलिए हमारी स्थिति धीरे 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 उतरती कला में आती गई, और उतरती कला में आते आते जब द्वापर युग आता है और देह भान की जैसे ही प्रवेशता होती है तो हमारी स्थिर स्थिति जो थी, पावन पूज्य स्थिति जो हमारी थी, हम उस स्थिति से हलचल में आना शुरू हो जाते हैं, और वो हलचल हलचल हमारी धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है। आखिर अंत में कलयुग के अंत तक जब हम पूरे 83-84वें जन्म पर आके पहुंचते हैं, तब तक हमारे अंदर ऐसे संस्कार बन जाते हैं वृत्ति के अंदर कि वह जो पवित्रता थी वो पवित्रता प्रायः नष्ट हो जाती है और अपवित्रता का पूरा साम्राज्य वृत्ति के ऊपर छा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि वृत्ति को सुधारने के लिए हमें स्मृति को पावरफुल बनाना पड़ता है, और वह भी किसकी स्मृति, सिर्फ 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 एक परम पवित्र सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, जो सदा कल्याणकारी हैं, सदा हम बच्चों के शुभचिंतक हैं, जो इस नव विश्व निर्माण के निर्माता हैं, सिर्फ एकमात्र उनकी ही याद स्मृति ऐसी है जो हमें शुद्ध पवित्र और पावन जो हमारी असली स्थिति थी वो हमारी बना सकता है। तो वृत्ति में जब वो स्मृति आवे तो सामर्थ्य आवे, बाबा की याद से ही वह शक्ति आती है, और जब शक्ति आती है तो हम समर्थवान कहलाते हैं, और जब हम समर्थवान बनते हैं तब हम हलचल को समाप्त कर सकते हैं। परंतु वृत्ति को विकृति मिली, विकृति क्या मिली कि देह भान में आए, और देह भान में वृत्ति का आने का कारण वह वृत्ति हमारे स्वभाव संस्कारों पर भी छा गई। इतना उसका प्रभाव रहा कि ना सिर्फ स्वभाव संस्कार परंतु प्रत्येक कर्मेंद्रियों पर भी उसका इतना प्रभाव रहा कि प्रत्येक कर्मेंद्रियां जो वो असली रस लेती थी, जिस रस में एक की स्मृति थी, एक की याद थी, एक की याद से उसके पास सामर्थ्य इकट्ठा होता था, जिस सामर्थ्य को इकट्ठा करके और वो कई जन्मों तक अपनी स्थिति को एक रस बनाए हुए चले, तो वह स्थिति हमारी बिगड़ती है। सामर्थ्य खूटता है, स्मृति से विस्मृति में आते हैं, कृति हमारी विकृति में आने लगती है, विकृत करने लगते हैं, और हर विकृति में ही वृत्ति को आनंद आता है, स्वभाव को आनंद आता है, संस्कार को आनंद आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक कर्म इंद्रिया बिल्कुल विपरीत में खुश रहती है। इसीलिए बाबा हमारा परिवर्तन करते हैं। समय परिवर्तनशील है, स्थितियां परिवर्तनशील हैं, अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, जगत के अंदर जो भी जड़ चैतन्य तत्व हैं या आत्माएं हैं सब परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन होते 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 यहां तक परिवर्तन हो जाता है कि हम जो पूर्ण रूपेण पावन थे पतित हो गए, पूर्ण रूपेण हमारी वृत्ति विकृति को प्राप्त हुई, स्वभाव भी हमारा विषयी विकारी बना, संस्कार भी हमारे पूरे पतित बने, अपवित्र हुए, संग भी हमें कुसंग मिलता गया, सत्संग से हम बिछड़ गए, और इस प्रकार उस वृत्ति दृष्टि कृति प्रवृत्ति और प्रकृति के साथ जब हम इस जगत के अंदर अपने पार्ट को प्ले करने लगे तो पार्ट भी वही मिला कि जिस पार्ट के अंदर हमारी प्रगति के लिए जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि हम हर बात में हमें विपरीत बात मिलती गई जो सहज नहीं थी, सरल नहीं थी, क्योंकि मुझे जो सरल लगे सहज लगे वो बात थी आदिकाल की अनादिकाल वाली बात। मेरे आदि के संस्कार अनादिकाल के संस्कार यदि वो मुझे प्राप्त हैं तो मेरे लिए वो सरल है और सहज है, पर वो मुझे नहीं मिले, उससे विपरीत मिला सब कुछ। तो वो विपरीत को हम बर्दाश्त करते आते हैं और धीरे 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 ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम उसको अपनाने लग गए, दिल से हम उसमें रस लेने लग गए और हमें उसमें रस आने लगा, जिसको ही फिर बाबा कहते हैं हम स्वचिंतन के बदले परचिंतन में इंटरेस्ट लेने लगे। हमारी दृष्टि सुखदाई दृश्यों को देखने के बजाय, आत्मिक भाव से देखने के बजाय दैहिक भाव से, दैहिक वृत्ति और स्वभाव से सभी को देखने लगी। अपनापन जहां दिखाना है वहां अपनापन दिखाने के बजाय हम माया के मुरीद होकर के, और जैसे माया ने मुझे दिखाया, जैसे माया ने मुझे चलाना चाहा, वो हमको चलाती गई। मन हमारा उसके वशीभूत चला, बुद्धि भी उसके वशीभूत चलने लगी और कर्म भी हमारे उसके वश होने लगे। इसलिए कलयुग के अंत में हम आत्माएं क्या कही गई, जीवात्माएं, मनुष्य जिसका मन पूरी तरह से विषय और विकारों से ग्रसित हुआ और मन की हलचल सबसे बड़ी हलचल है। मन हलचल में जब आता है तो वो बुद्धि को भी भ्रमित करता और बुद्धि भी यथार्थ निर्णय नहीं ले पाती। मन का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कलयुग के अंत में कि उसके प्रभाव में बुद्धि चलती, नहीं तो बुद्धि के प्रभाव में मन को चलना है, क्योंकि बुद्धि है निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति, जो अच्छे और बुरे का निर्णय करती है, सत्य असत्य का निर्णय करती है, और उसके निर्णय के पश्चात ही संस्कारों में कर्म करने की प्रेरणा आती है, और वो संस्कार हमारी कर्मेंद्रियों को प्रेरित करके और कर्म करवाता है। तो बुद्धि भी जब मन के प्रभाव में प्रभावित होकर और विकृति में चलने लगी बुद्धि, तो निर्णय शक्ति हमारी गलत होने लगी। तो कभी हमें उसने अच्छी बात बताई, कभी उसने निर्णय में हमें गलत बात भी बताई, वो खुद भी कंफ्यूज होकर के चलने लगी, राइट क्या, रॉन्ग क्या, भला क्या, बुरा क्या। यहां तक कि समय भी ऐसा रहा कलयुग में कि बुराई को भी लोग अच्छा समझने लगे, झूठ को भी सच मानने लगे, झूठ को भी यहां तक सिद्ध करने लगे कि झूठ ही सच हो गया और जो सच था वह झूठ में परिवर्तित हुआ। इतनी हद तक परिवर्तन आया। अब ऐसी सृष्टि में हम बच्चों ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को जन्म दिया, ऐसे कीचड़ के बीच में, ऐसी वृत्ति के बीच में, ऐसी लोगों की दृष्टि के बीच में, ऐसे लोगों के स्वभाव संस्कारों के बीच में और ऐसी प्रवृत्ति के बीच में, संपर्क संबंध व्यवहारों के बीच में हम बच्चे जन्मे, तो हमारे भी अपने संस्कार वैसे ही थे। अब हमें परिवर्तन स्व का भी करना और फिर दूसरों के द्वारा भी आने वाली विपरीत परिस्थितियां, जो परीक्षा के रूप में मेरे परिवर्तन में जो बाधा डालने लगी, तो मुझे स्वयं को भी बचाना और अन्य को भी बचाने का सामर्थ्य धारण करना है। क्योंकि बाबा ने मुझे कहा कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप हूं तुम्हारा, तुम्हें मेरे समान बनना है। तो हमारी भी ये चाहना और आशा बनी कि हमें बाप समान बनना है, और बाप समान बनना है तो मुझे भी औरों की वृत्ति, दृष्टि, कृति, जैसे मेरा परिवर्तन होता चला जाए, मैं अन्य का भी परिवर्तन करूं। मेरा कल्याण बाबा ने किया, अब मेरा काम है मैं अन्य का कल्याण करूं, परंतु उसके लिए मेरे में सामर्थ्य चाहिए। और सामर्थ्य किस बात का, तो आज तो हम आज की टॉपिक को ही लेंगे कि सामर्थ्य मुझे चाहिए मेरी अडोल स्थिति का, मेरी अचल स्थिति का, मेरी स्थिर स्थिति का, जो कभी भी कितने भी माया के विघ्न आए, चाहे रॉयल रूप में आए, चाहे स्पष्ट रूप में आए, परंतु मेरी स्थिति हलचल में ना आए, मेरी स्थिति डावाडोल ना हो। और फिर रॉयल रूप में, जैसे कहते ना सीता के आगे राम के रूप में माया आई, रावण ने राम का रूप धरा, तो माया भिन्न भिन्न रूप धर करके हमारे परिवर्तन में विघ्न डालने आती है। वास्तव में माया भी कोई अलग चीज नहीं, अलग हस्ती नहीं, अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो है तो वो हमारे ही बिगड़े हुए स्वभाव की विकृति। हमारी ही विकृति हमारे सामने हमारे लिए माया बन करके आती है। तो ये जो हमारा स्वभाव बिगड़ा विकृति के कारण, वृत्ति जो बिगड़ी, दृष्टि बिगड़ी, कृति बिगड़ी, प्रवृत्ति बिगड़ी, अब हमें उसको एक रसता में लाना है। तो हमें बाबा ने तो कई बातें सिखा दी है, बहुत ज्ञान हम बच्चों को दिया है। ज्ञान तो मिला, ज्ञान है बौद्धिक स्तर पर जानकारी, जानकारी बाबा ने दी, लेकिन जानकारी के साथ साथ बाबा ने हमें शक्तियां भी दी योग सिखाकर, क्योंकि सिर्फ जानकारी से काम नहीं बनता, जानकारी के साथ हमको पावर्स भी चाहिए। अगर पावर ना हो तो जानकारी कुछ कर नहीं पाती। इसीलिए हम बच्चे क्या कहते हैं, पुरुषार्थ करते करते जब कोई बात बिगड़ती है, हमारी हलचल होती है, अचल स्थिति नहीं रहती, हम परेशान होते हैं, माया हमें बहुत घड़ी घड़ी विघ्न डालती है, हम मेहनत करते हैं परंतु फिर भी हम विजयी नहीं हो पाते, तो हम अक्सर क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, मैं समझती हूं, मैं समझता हूं, परंतु फिर भी क्या, फिर भी हम उसके वशीभूत हो गए, हमने हार खाई, हम हार खा रहे हैं या हार खा लेते हैं, हम विजयी नहीं बन पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है ये बात हम रिपीट करते हैं टीचर के आगे या निमित्त के आगे कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हाँ मुझे परचिंतन तो नहीं करना चाहिए था, बाबा भी कहते हैं अमृत वेले योग करो, नींद नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे बहुत मीठा बोलना चाहिए, परंतु 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 परंतु, लेकिन लेकिन लेकिन, हर एक के पास अपने अपने कारण, अपने अपने बहाने, अपनी अपनी कमजोरी का वर्णन, और कहने में क्या है, हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं। तो मास्टर ज्ञान के सागर होने के बावजूद भी बाबा कहते बेहद के समझदार हो, बेहद के समझदार होते हुए भी हम असमर्थ हुए माया को जीतने में, माया के रॉयल रूप को पहचानने में। क्यों? कारण क्या कि जानकारी बौद्धिक स्तर से तो ले ली, लेकिन जानकारी के साथ जिसको कहते हैं समझदारी, समझदारी अर्थात जो हमने जाना उसको हमें महसूस करना, जैसे मैंने जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये हुई जानकारी। लेकिन मुझे महसूस कब होता है, जब मैंने योग सीखा। सिर्फ योग सीखने से भी मैं आत्मा हूं स्थिति मेरी नहीं बनती है, उस समझदारी को पहले मैंने महसूस किया, महसूस करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, और उस अभ्यास में मुझे बार बार विजयी बनना पड़ता है। जब मैं बार बार की विजयी अभ्यासी बनती हूं, तब जाकर के मेरी स्थिति योग में आत्मिक बन करके और मुझे सुख देती है, तब मैं देही अभिमानी में सुख पाती हूं, वरना मेरी देही अभिमानी स्थिति नहीं बनती। और वो देही अभिमानी स्थिति मेरी बनती है तो ऐसी बनती, बस बैठे और एक सेकंड में मैं यहां हूं, सेकंड में मैं अपने बाबा के पास हूं। और वो होता है कि हम मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, घड़ी घड़ी अपने मन को समझाते हैं, घड़ी घड़ी अंदर में अपने को कमेंट्री देते हैं कि तू आत्मा है, देह नहीं, तू बाबा को याद करने बैठे हो, तुम बाबा को याद करो, अभी और कोई बातें मत सोचो, इधर उधर के सब संकल्पों को एक बाजू छोड़ो, नहीं छूटते। ऐसे ही माया की हर परिस्थिति का सामना करते समय, हर विपरीत बात का सामना करते समय, हर विपरीत संजोग का सामना करते समय, हर परीक्षा का सामना करते समय हमारे अंदर अनेकानेक संकल्प विकल्प उठते हैं जो मुझे स्थिर होने नहीं देते, एक रस रहने नहीं देते, क्योंकि मुझे विकृति के रस बैठे हुए हैं, वृत्ति को आदत पड़ गई है, वो विपरीत सुनने का, देखने का, करने का, तो वो आदत मुझे बदलनी पड़ रही है, जो मेरे लिए सहज नहीं हो रही है। और उसको सहज बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सरल तरीका सिखा दिया कि हर विपरीत संजोग में, प्रतिकूल संजोग में, हर माया की परीक्षा में, हर माया के विघ्न के समय, हर माया के वार के समय, स्वयं को योगयुक्त स्थिति में, एक तो अंदर सामर्थ्य स्मृति के आधार पर लाना, अर्थात बाबा को याद करना। बाबा को याद करने का मतलब उस समय वो पॉइंट याद आ जावे, जिस समय जो पॉइंट मुझे उसके सामने यूज करनी है शस्त्र के रूप में, जैसे स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र देखा जाए तो ज्ञान है, आदि से अंत तक का, जिसमें आत्मा को दर्शन होता है अपना। लेकिन इस ही स्वदर्शन चक्र को हमें शस्त्र बनाना है। जब हम उसको शस्त्र बनाते हैं तब वो गला काटता है, तब वो माया का गला काटेगा, माया के विघ्नों का गला काटेगा, रॉयल रूप की माया का गला काटेगा, मुझे परेशान करने वाली हर परिस्थितियों को वो काटेगा, हर परीक्षा को वो काटेगा, और मुझे वो पास करेगा, बाबा के पास भी ले आएगा, बाबा की माया के द्वारा आने वाली परीक्षाओं में मुझे पास भी करेगा, पास में पास भी थॉनर भी हो जाऊंगी, और धर्मराज से भी मैं सलाम मार के पास हो जाऊंगी। तो इसके लिए हमें उसको शस्त्र बनाना है। तो स्वदर्शन चक्र को शस्त्र कैसे बनाएं? बाबा ने सहज तरीका सिखा दिया कि एक तो जब भी ऐसी बातें सामने आए तो क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये कह 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 वाली जो कौवे की भाषा है, बाबा कहते हैं वो करना बंद करो। हम जितना क्वेश्चन करना बंद करते हैं उतनी हमारी समाधान वृत्ति बनती है। जब वृत्ति पावरफुल समाधान की बनने लगती है तो ऑटोमेटिकली दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति सब कुछ हमारा समाधानकारी बनता जाता है। तो एक तो हम अपने में प्रश्न पूछने बंद करें। कल की ही बात है, कल हमें मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने ड्रामा का पाठ कैसे पक्का कराया। प्रैक्टिकल बाबा के आगे बात रखी गई कि दोनों दोनों दादियों का ऐसा हुआ, यानी हम बच्चों को अच्छा नहीं लगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, हाँ कई प्रकार के हम बच्चों के संकल्प बाबा के आगे जरा संभल संभल के रखा एक वाक्य में। लेकिन बाबा का जवाब क्या था? ड्रामा। फिर कोशिश की बाबा से जवाब निकलवाने की, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, जो भी कहना है जो लेना है देनी है दो। बाबा स्थिर होके एकदम एक रस स्थिति में बाबा बैठे, हमें भी दिखाया कि कैसे अब जो बोलना है बोलो, बाबा सुन रहा है। बाबा शांत हो गए। भिन्न भिन्न रीति से कल चार पांच बार बाबा ने ड्रामा पे कैसे रहना हम बच्चों को वो सिखाया, और कितना धीरता से, कितनी शांति से और कितना प्रेम से मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए ड्रामा कह के हम बच्चों को ड्रामा पे स्थिर कर दिया। और हम बच्चे क्या करेंगे? हाँ समझते तो हैं, जानते तो हैं, ड्रामा सब कुछ हो जाता है उसके बाद, या तो हम कहेंगे चलो जाने दो जो हो गया सो ड्रामा, है ना? सब कुछ होने के बाद कहते हैं, पहले नहीं करते ड्रामा, कहना पहले चाहिए, कर्म करने के पहले कहना होता है। लेकिन अक्सर हम मेजोरिटी 98% कभी कहते हैं जब वो बात बन जाती है, घटना घट जाती है और हम संकल्प विकल्प भी कर लेते हैं और उस घटना के वशीभूत या उस परिस्थिति के वशीभूत हम कई प्रकार के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं, स्थिति भी ऊपर नीचे कर लेते हैं। फिर जब देखते हैं कि अब कोई चारा नहीं मन को शांत करने का या वातावरण को शीतल करने का या वातावरण को ठंडा करने का, न सामने पक्ष में ठंडे हो रहे हैं न हम ठंडे हो रहे हैं, तो फिर आखिर कौन सा शस्त्र यूज करते हैं? ये नॉलेज को शस्त्र के रूप में यूज करते, फिर हम आखिर क्या कहते हैं? चलो जाने दो जो हुआ ना सो ड्रामा। लेकिन हम मनुष्य के स्वभाव की विचित्रता देखो, ड्रामा कहने के पश्चात भी संकल्प चलते रहते, होना तो नहीं चाहिए था, चलो ये तो ड्रामा करके हमने छोड़ दिया, लेकिन ये ठीक तो नहीं था, ये था वो था ऐसे था वैसे था। अच्छा समाने की शक्ति भी कम होने के कारण फिर एक तो बुद्धि ने नहीं समाया, मन ने भी नहीं समाया, वृत्ति में भी हलचल, मन में हलचल, बुद्धि में हलचल, परंतु उस हलचल को हम यहां तक बाहर लाते कि फिर हम अन्य को भी सुनाते। ड्रामा माना फुल स्टॉप हो गया ना, फुल स्टॉप माना अंदर भी फुल स्टॉप, मन के संकल्पों को भी हमने कहा बस, बुद्धि को भी कहा बस, स्वभाव संस्कार को भी कहा बस, लेकिन वो बस नहीं होता, वो सबको सुनाने के लिए उत्सुक रहता। फिर हम वर्णन भी करते, ऐसे हुआ ये हुआ वो हुआ, अब उसमें हम अपना भी प्रदर्शन करते, अपनी स्थिति का प्रदर्शन, अपनी धारणा का प्रदर्शन, और जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी उसका भी प्रदर्शन, उसके भी अवगुण का प्रदर्शन, स्वयं के भी अवगुण का प्रदर्शन। मम्मा के आगे जब कोई बात लेकर के जाते थे तो मम्मा के आगे कंप्लेन तो वो करते थे, मम्मा सुन भी लेती थी, लेकिन उसके पश्चात मम्मा बड़े प्रेम से यह भी समझा देती थी कि कंप्लेन दूसरों की नहीं हुई, हमने अपनी ही कंप्लेन की। कैसे? कि मेरे अंदर नेगेटिव देखने का संस्कार है या स्वभाव है, मैंने दूसरे की कमी देखी और उसका वर्णन किया, तो इसलिए हम परचिंतन करके हम अपने स्वभाव को प्रत्यक्ष करते हैं, हम अपनी वृत्ति के अंदर विषयी विकारी बातें सोच करके या क्या क्यों ये सब देहभान के वश होकर ये जो सोचते हैं ये हम अपनी ही वृत्ति को दुष्वृत्ति बनाते हैं, जो थी बनी हुई फिर से हम उसको वैसी ही मैली करते हैं। वो पत्थर डाला, पूरी स्थिर स्थिति जो हमारी थी, एक रस अवस्था थी, वो हमारी टूटी, हम हलचल में आ गए। हलचल में आना माना क्या? मैं शांत थी, कोई ने ऐसी कोई बात छेड़ दी, एक ही सेंटेंस बोला, वाक्य बोला, मैंने सुना, अंदर में उसको धारण किया, माना वो पत्थर कान के द्वारा सीधा मेरी स्थिति पर पड़ा और अंदर में जो भी मेरी एक रस स्थिति थी वो हलचल में आ गई। अच्छा, ऐसे बोला, ऐसे कहा, ऐसे मेरे लिए बोला, अच्छा वो व्यक्ति ऐसी, अरे हमने तो ऐसा समझा ही नहीं था, ये तो नहीं होना चाहिए, वो ये क्या क्यों किस लिए। फिर उसके कनेक्शन में देखो, मन बुद्धि और स्वभाव संस्कार कितनी हद तक गिरे हुए कि उस एक को लेकर के पुरानी घटनाएं जो बरसों पहले घटी होंगी या कुछ मासों पहले घटी होंगी, कुछ हफ्तों पहले घटी होंगी, कुछ दिनों के पहले घटी होंगी, सारी घटना उससे जोड़ के वो घटनाओं को याद करते। जो घटनाएं घट चुकी, गुजर चुका, जो समय गुजर गया, माना मर गया, उस मरे हुए को जिंदा कर देते, जिसको कहते हैं कब्र से हड्डियों को निकालना बाहर, कब्र तक खोद डालते हम, तो पूरी स्थिति हलचल में रहती। अब हमें तो रहना है अचल। अगर हमें योग से अपने अंदर सर्व शक्तियों की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति भी नहीं उपलब्धि, उपलब्धि अर्थात सिद्धि, योग की विधि सिद्धि प्राप्त कराती है। सिद्धि माना एक होता है कर्म और कर्म का फल, पुरुषार्थ मेहनत और उसका फल। लेकिन जब हम उस मेहनत के फल को सिर्फ स्वयं नहीं खाते, लेकिन हमारे पास इतना जमा होता कि मैं जब चाहूं, जिसको चाहूं, जिस समय चाहूं, जितना देना चाहूं, जैसा देना चाहूं और जो भी देना चाहूं, मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ना कोई मेरा स्वभाव रोके, ना कोई संस्कार रोके, ना मेरी वृत्ति मुझे रोके, ना मुझे कोई व्यक्ति रोके, और मैं अपने उठने वाले उन शुभ संकल्पों को, उठने वाली वो भलाई को, मैं उस कर्म को प्राप्त करूं सिद्धि के रूप में, उसको कहते हैं सिद्धि। जब मैं प्रैक्टिकल करूं, जिसके लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि कोई हमारे सामने आ गए तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में उसे क्या अनुभव आना चाहिए, उसको शांति चाहिए, वो दृष्टि दे, उसको शांति की अनुभूति हो। वो व्यक्ति आई, प्यार की प्यासी है, उसको कहीं अपनापन नहीं मिलता, वो दृष्टि दे हमें ले और उसे ऐसा बाबा का प्यार का अनुभव हो कि उसको अपनापन फील हो, वो तृप्त हो, संतुष्ट हो। तो ये सेकंड में सिद्धि जो होती है वो वरदान है, सेकंड में प्राप्ति कराती है। तो एक रस अचल और अडोल स्थिति के लिए हमें क्या करना पड़े, स्वदर्शन चक्र को, ड्रामा को शस्त्र बनाना पड़े। जो शस्त्र मैं जब भी उस चक्र को घुमाऊं, अर्थात मैं वह पॉइंट स्मृति में लाऊं जो मेरे लिए शस्त्र का काम करे, और वो शस्त्र जाके उसका गला उड़ा दे, अर्थात उस उठने वाले परचिंतन या हमारे स्वभाव के विपरीत, या बाबा ने जो श्रीमत दी है उसके विपरीत जो भी संकल्प, विचार, विवेक, निर्णय या जो कुछ भी मेरे अंदर मन मत, परमत या फिर माया की मत, जो भी मेरे अंदर उछल के बाहर आना चाहती है, मुझसे कर्म कराना चाहती है, वो कर्म न करा सके, आवे अंदर लेकिन विजयी न बने, कर्म में आ न सके, वो किसी भी प्रकार से वो अपने को बाहर न निकाल सके और हम उसे अंदर ही अंदर खत्म कर दें। जब ये सूक्ष्म सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए तब हम सिद्धि को भी प्राप्त हों, तब हम सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ग्लानी, जय पराजय, हम सब में विजयी हो सकते हैं। नहीं तो ये निंदा सुनी, मूड खराब, ये किसी ने ग्लानी की, माइंड डिस्टर्ब, ये कहा मेरी हार हो गई और हम निराश उदास, ये माया के वशीभूत हुए और हम पावन थे पतित बने, ये हमारी स्थिति बनती है, इतना हमें वो हलचल में ले आती है। तो इसीलिए अचल अडोल बनने के लिए एक रस स्थिति जो हमें इन सभी बातों में विजयी बनाए, माना जैसे एक तराजू का वो कांटा होता है ना, वो स्थिर रहे, मान में भी हम इतने खुश ना हो जाए, अभिमान में ना आए, और अपमान हो तो हम ऐसे दुखी ना हो जो हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें, मतलब दोनों परिस्थिति में हम समान रहे, सुख में भी हम खुश जरूर हों, खुशी का अनुभव जरूर करें, लेकिन सुख में हमको अभिमान नहीं आए, हम दूसरों को अपने से कम ना समझने लगे, और दुख में हम इतने दुखी भी ना हों जो हम भक्ति मार्ग से लेके माया के वशीभूत होके अपने को दुखी करते आए और दुखी समझते आए। ग्लानी भी, ग्लानी और गायन माइंड डिस्टर्ब ना करें। प्रकाशमणि दादी जी, अपनी मीठी मीठी दादी, हमेशा एक बात बहुत अच्छी हमें कहती थी कि अपनी स्थिति का जो थर्मोमीटर है ना, वो किसी के भी हाथ में नहीं देना है, अपने पास रखो, वो थर्मोमीटर के पारे को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। हम अक्सर करके क्या करते हैं, सुख तो देना सीख गए लेकिन सुख लेना वो कम सीखे, दुख नहीं देना तो सीखे लेकिन दुख नहीं ले ये कम सीखे। पर चिंतन करना सीखे लेकिन स्वचिंतन में रहे और स्वयं को सुख दे ये नहीं सीखे। इसलिए देना लेना दोनों हमें सीखना पड़े बराबर। हम अक्सर सभी को ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन स्थिति बनाने समय हम भूल जाते हैं कि मुझे अपनी स्थिति का, यानी सकारात्मक पावरफुल सामर्थ्य वाली स्थिति के संग के रंग में उसको रंगना है, ना कि मुझे उसके कमजोर, नकारात्मक और असामर्थ्य वाली जो भी बातें हैं उनका मुझे शिकार बनना है। इसलिए हम बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करें, यानी स्मृति को पावरफुल करें, बाबा की स्मृति, तो माना बाबा की जो भी श्रीमत है, बाबा का जो ज्ञान है, जो पॉइंट्स हैं ऐसी समय पर जो दवाई के रूप में काम करती हैं, इंस्टेंट फायदा पहुंचाती हैं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रखें, उसके लिए हमें हाँ लिखना पड़े, रोज मुरली पढ़नी पड़े, रेगुलर अटेंशन से मुरली पढ़नी पड़े, काम उतारने के लिए नहीं। कई मुरली पढ़ लेते हैं फिर समझते चलो आज का तो मेरा काम उतरा, मैं निर्बोध हो गया या हो गई, मुरली तो पढ़ ली हमने लेकिन कैसे पढ़ी नहीं, मुरली भी ऐसे पढ़े कि वो मुरली में जो मुझे शक्तियां मिल रही है ना वो मैं लेके छोड़ू। तो उसके लिए हम स्मृति को पावरफुल बनाएं, सामर्थ्य प्राप्त हो ऐसी बनाएं, निरंतर रहे ऐसा करें। उसके लिए अपने मन की दिनचर्या ऐसी बनाएं जो मन हलचल में ना आए, बुद्धि भी हमारी हलचल में ना आए, अडोल न हो, डोले नहीं, डोलायमान न हो, और स्वभाव संस्कार भी किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित हो करके और ऐसे कर्म कर्मेंद्रियों से न कराए जो हम हलचल में आ जाए। क्योंकि कोई भी छोटी या बड़ी गलती हो जाएगी तो हम ब्राह्मणों को बहुत वो परेशान कर देती है। तो इसीलिए कोई ऐसी कर्मेंद्रियों से गलती भी ना हो जाए, न देखने की, न सुनने की, न बोलने की, न हाथ पांव के द्वारा कुछ करने की। शरीर की कर्मेंद्रियां मिली क्यों है हम ब्राह्मणों की? टोटल ये शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिली है। कान मिले हैं बाबा की ही बातें सुनने के लिए, सकारात्मकता ही सुनने के लिए, स्वचिंतन की बातें सुनने के लिए, परचिंतन के लिए नहीं। मुख भी मिला है ज्ञान दान करने के लिए, जितना हो सके हम ज्ञान दान करें, अन्यथा हम मौन में रहें, अर्थात बाबा की याद में रहें। वृत्ति के लिए भी बाबा ने याद का साधन दे दिया, मन को कहा मेरे में लगा, लगन में मगन रहें। तो बस यही सारा दिन करते रहें, जिस रास्ते जिस मंजिल की ओर जाना है और वहां जो रास्ता जाता है हमें उस रास्ते पर ही चलना है, उस रास्ते का ही सोचना है। हम दूसरे रास्ते का सोचे ही क्यों? और उन साथियों का ही साथ लेना है जो मेरे रास्ते पर मेरे साथ, मेरी जो मंजिल है उसकी भी वही मंजिल हो। तो ये है एक रस और अडोल अचल स्थिति बनाने का मुख्य साधन, ड्रामा। हर बात में ड्रामा को ले आएंगे पर कैसे? खाली ऐसे नहीं नॉलेज रटा हुआ खाली बोल दे हाँ ड्रामा, नहीं। ड्रामा माना फुल स्टॉप। इतना हम अपने को अभ्यासी बनाएं कि मन न चले, घड़ी घड़ी उसको कहे बस तू ड्रामा कह दिया ना, चुप रहो अभी। वो कहेगा नहीं, बोलो ये बोलो, ऐसे बोलो वैसे बोलो, क्यों क्या कैसे किस लिए, ऐसा नहीं वैसे नहीं, स्टॉप चुप। उसको सहन करना सिखाएं, समझाएं, उसे अच्छा लगे। अच्छा क्यों लगेगा? जब वो देखेगा कि सच बात है, मैं ड्रामा कह के शांत रही या शांत रहा, चुप रहा, बाबा को याद किया तो परिस्थिति जो काफी बिगड़नी थी वो बिगड़ने से बच गई। काफी कुछ मेरे से गलतियां होनी होती, होनी होने जाती, लेकिन मैं उससे बच गई या बच गया। नहीं तो लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, तू तू मैं हो जाती, तेरा मेरा हो जाता, मन मुटाव होता, रूहानी स्नेह में थोड़ी कमी पड़ जाती, आत्मविश्वास में हम अपने में कम पड़ते और दूसरों में विश्वास रखने में हमारा विश्वास टूटता, कितने कई नुकसान हो जाते हैं हमारे। तो ये ड्रामा बड़ा सुखदाई है, बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर हमको लेके जाता है, ऊंचे पद पर विराजित कर देता है। ड्रामा की जो सीट पर बैठता है ना, आप उसको देखेंगे ना, वो बिल्कुल एक ऐसे ऋषि मुनि की तरह या एक धर्म स्थापक जैसे उनकी मुद्राएं दिखाई जाती है चेहरे पर, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा देख लो, कितना चेहरा हम सभी को आकर्षित करता, उनके नैनों में वो आकर्षण है, उनके नैन जैसे हमारे पर कोई जादू कर देते हैं। तो ऐसा हमको स्वयं को आकर्षण मूरत वो बना देता। इसलिए ड्रामा की धारणा मम्मा की बहुत पक्की थी। ऐसे नहीं बनने के बाद हम कहे ड्रामा नहीं, एक बस जैसे ही बात हुई सामने और हम ड्रामा कह के शांत हो जाए, इतनी ब्रेक पावरफुल लगे हमारी कि बिल्कुल कोई संकल्प ना चले आगे। तो उसको फिर बाबा की मदद भी वैसे अद्भुत मिलती है, उसको भी बाबा शक्तियां देने में कभी ब्रेक नहीं लगाता। तो इसीलिए हम सभी ड्रामा की धारणा में रहें, ड्रामा को समझें, महसूस करें और स्वदर्शन चक्र को शस्त्र बनाएं। तो ड्रामा कहना शस्त्र है। ओम शांति, ओम शांति।
आबू की धरा पर आए शिव भगवान, आबू की धरा पर आए शिव भगवान, साकार ब्रह्मा बाबा का ले तन आधार, आबू की धरा पर आए शिव भगवान। ज्ञान सुन ले जो उनकी आंखें खुल जाए, बस याद से उनकी सब पाप धुल जाए। मैं आत्मा हूँ यह देह विनाशी है, बेहद की ये दुनिया एक सुंदर नाटक है। यह ज्ञान सुन ले जो खुशहाल रहता है,